गिनती अध्याय 23। राजा बिलाम को ऊंचे पहाड़ पर लाया जहां से वो घाटी में इसराइलियों की छावनी को देख सके। वे किर्यातुसोत शहर गलियों का नगर तक आए। बिलाम ने राजा से कहा, मेरे लिए यहां 7 वेदी बना और परमेश्वर के लिए बलिदान तैयार कर। अतः उन्होंने 7 वेदियां बनाई और उसने 7 बछड़ा और 7 मेढ़ों की बलि चढ़ाई। तब बिलाम ने राजा से कहा, तू यही खड़ा रहे, मैं ऊपर जाता हूं, शायद परमेश्वर मुझसे बात करे और जो कुछ भी परमेश्वर मुझे दिखाएगा मैं तुझे बता दूंगा। और वो ऊपर की ओर चढ़ गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं, प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बाला के पास लौट जा और यो कहना। और वो उसके पास लौट कर आ गया और क्या देखता है कि वो सारे मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इसराइल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है? वो इसराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? गिनती 23:4-12 पद। भविष्यवाणी का प्रथम भाग रुचिकर है। उसने कहा, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। रुचिकर है, कितने लोग धर्मियों की मृत्यु चाहते हैं परंतु वे धर्मियों का जीवन जीना नहीं चाहते। वे मसीहत में रहकर मरना अच्छी बात समझते हैं। मैं किसी और तरह मरना नहीं चाहता, परंतु ऐसा जीवन जीना विभव की बात है। परंतु ना जाने क्यों लोग धार्मिकता का जीवन जीने में रुचि नहीं रखते हैं, केवल मरने में। जैसे बिलाम ने कहा, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। यदि तुम धर्मियों की सी मृत्यु मरना चाहते हो तब तो तुम्हें चाहिए कि तुम धर्मियों का सा जीवन जियो। इसलिए राजा बालाक ने कहा, आओ मैं तुम्हें दूसरा स्थान दिखाऊंगा, क्योंकि यहां से तुमने उन सबको नहीं देखा। एक और स्थान है, शायद वहां से तुम उनको शाप दे सको। इसलिए वो उसको पिसगा की चोटी पर ले गया और वहां फिर से उन्होंने 7 वेदियां बनाई और 7 बैल और 7 मेढ़े अर्थात हर वेदी पर बलि चढ़ाई। और बिलाम परमेश्वर से मिलने को गया और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिपोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? गिनती 23:16-18-19 पर। ये बहुत ही रोचक धर्मशास्त्र है, परंतु उसका संदर्भ उससे भी अधिक रुचिकर है। उसका संदर्भ है कि परमेश्वर ने इसराइल देश को आशीष दी है। वो प्रयत्न कर रहा था कि परमेश्वर को बदले और उन लोगों को शाप दे जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? परमेश्वर का अपरिवर्तनीय वचन वो कभी नहीं बदलता। वो मनुष्य नहीं है। यदि परमेश्वर ने अपनी आशीष की घोषणा की है तो वो अवश्य आएगी। यही इसका सार है। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है जो परमेश्वर के चरित्र के बारे में हमें बताता है, क्योंकि कुछ पद पुराने नियम में ऐसे हैं जिनसे लगता है कि परमेश्वर ने परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को बदला। परंतु ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर का उद्देश्य सदा स्थिर और निश्चित है। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे जाकर लोगों को चिता दे कि मैं 40 दिनों में निनवे को नष्ट कर दूंगा। योना ने निनवे में प्रचार किया और उन्होंने धूल और राख में बैठकर पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने दंड भेजने से रोक दिया। यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया होता तो वे 40 दिनों में नष्ट हो गए होते। क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनका समय बढ़ा दिया। परंतु परमेश्वर जानता था कि वे उनको और समय देगा। हम परमेश्वर की तरह सोचने में असमर्थ है। मैं आज दोपहर फुटबॉल का खेल देख रहा था। इस खेल से मुझे उत्साह नहीं प्राप्त हो रहा था। मैंने टीवी बंद कर दिया क्योंकि उनका स्कोर देख मैं जान गया कि कौन जीतेगा। इसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है। भजन संहिता में लिखा है, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। भजन 90:9 पद। या कोई कहानी जो सुनाई जा चुकी है। हमारा जीवन ऐसा है जैसे किसी फिल्म का रीप्ले। परमेश्वर आरंभ से अंत तक सब कुछ जानते हुए हमसे व्यवहार करता है। वो जानता है कि मेरा प्रत्येक कदम का निर्णय का परिणाम क्या होगा। इसलिए कई बार अपनी ओर से देखते हुए मैं सोचता हूं कि परमेश्वर बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जानता ही था। बदलाव तो मेरी समझ में है, मेरे दृष्टिकोण में है। परमेश्वर तो सदा एक सा ही रहता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। धर्मशास्त्र में लिखा है, और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। ये तो मनुष्य की रीति पर परमेश्वर को देखना है, और मानव भाषा में परमेश्वर के कार्यों को अपनी परिभाषा देना है। उसको समझना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के रहने का विस्तार हमारे समय और अंतरिक्ष के परिधि से बाहर है। हमारे पास शब्द भी नहीं है कि हम उसके कार्यों का वर्णन कर सके। इसलिए हमें जो शब्द हमारे पास है उन्हें प्रयोग करना पड़ता है। हम सच्चाई से परमेश्वर के कार्यों का वर्णन नहीं करते। वो ईश्वर है, वो बदल नहीं सकता। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। गिनती 23:20-21 पर हमारी सहायता कर, तुम्हारा क्या अर्थ है? उसने दो माह पहले या दो सप्ताह पहले उनके बीच में विषैले सांप भेजे थे क्योंकि वे बुड़बुड़ाए थे। क्या वो न्यायी परमेश्वर नहीं है? उसने याकूब में अधर्म रहने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि याकूब में अधर्म नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे अनदेखा करने का चुनाव किया। यही दाऊद कह रहा था, धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म ढांप दिया गया है। हमने सुना है कि संता क्लॉस एक सूची बनाकर दो बार परखता है कि देखे कौन भला और कौन बुरा है। बहुत से लोग परमेश्वर को ऐसे ही देखते हैं, वे सूची बनाते हैं, परंतु परमेश्वर मेरी बुराइयों की सूची नहीं रखता। धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म ढांप दिए गए हो, लेखा नष्ट कर दिया गया हो। परमेश्वर ने कहा, उसने याकूब में कोई अधर्म नहीं पाया। ये तो महान अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि अधर्म तो वहां था, परंतु परमेश्वर ने उसे देखना ना चाहा। ऐसा ही वो उनके अधर्म को भी देखना नहीं चाहता जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखते और उस पर भरोसा करते हैं। इसे हम रोमियो के अध्ययन समय के लिए छोड़ देते हैं। जब हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करेंगे तब हम इस पर मनन करेंगे, परंतु ये एक अद्भुत धर्मशास्त्र है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इसराइल के विषय अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। गिनती 23:23 परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। लोग कहेंगे परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किए? जब परमेश्वर लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लाएगा और उन्हें यहां स्थापित करेगा, या तब वे कहेंगे ओह देखो परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया? मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर ने क्या ही अद्भुत काम किया है। यही कलवरी प्रार्थना घर के लिए सत्य बात है। कोई मनुष्य इसकी सफलता का श्रेय नहीं उठा सकता। परमेश्वर ने तुच्छ जन को और तुच्छ जनों के समूह को चुना कि एक सुंदर कार्य में प्रयोग करे। बड़े बड़े लोग यहां आते हैं, विद्वान लोग, प्रतिभाशाली लोग सब आकर विश्लेषण करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वे कोई न कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, परंतु अपना सिर खुजलाते हुए लौट जाते हैं। प्रचारक लोग यहां आने के बाद जाकर कहते हैं, मैं तो इससे अच्छा प्रचार कर सकता हूं और देखने में मैं उस पास्टर से अधिक रूपवान हूं, परंतु मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? उनकी समझ में ही नहीं आता है। बस आप केवल यही कह सकते हैं, परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत काम किया है। उसने फिर से संसार के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, ताकि उन्हें घबराहट और दुविधा में डाले और अपने कार्यों के द्वारा बढ़ाई और महिमा पाए। ईश्वर ने क्या ही अद्भुत कार्य किया, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक रोचक पद, नबी ने कहा, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की संतान पर कोई जादू टोना टोटका नहीं चलता है। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि कोई न कोई हम पर जादू कर रहा है या कर देगा, या किसी ने हम पर किसी प्रकार का बंदिश डाल रखी है। नहीं, ऐसा नहीं। धर्म शास्त्र कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यशया 54:17 पद। ये भाग क्या है? तेरे विरुद्ध कोई वार सफल न होगा। कोई जादू, मंत्र, टोना टोटका आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने आपको आशीष देने का चुनाव किया है। इससे बदला नहीं जा सकता। भविष्यद्वक्ता ने इस सच्चाई को समझ लिया था, इसलिए उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्हें मैं शाप नहीं दे सकता। सुन, वो दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वो जब तक आहेर को ना खा ले और मारे हुओं के लहू को ना पी ले, तब तक ना लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। गिनती 23:24-25 पर। दूसरे शब्दों में, ना शाप देना ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहां 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। गिनती 23:26-29 पर। यहां भी उन्होंने वेदियां बनाई और बलिदान चढ़ाए।